आधुनिक काव्य भाग दो षष्ठ प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता यात्रा और अंतर यात्रा क्या है यह आहा हिंद की जमीन होगी तो जरूर यह स्वाधीन। महेश नारायण की 1881 में बिहार बंधु में प्रकाशित स्वप्न कविता की ये काव्य पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी कविता की इच्छा संघर्ष और स्वप्न का शुरुआती घोषणा पत्र है। इसमें हिंदी की जमीन हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता का पर्याय है। कवि की आकांक्षा है कि मातृभूमि एक न एक दिन जरूर स्वाधीन होगी। आधुनिक हिंदी कविता के पाठकों के मन में कई सहज सवाल अक्सर हिलकोर लेते हैं, मसलन आधुनिकता क्या है, आधुनिक कविता क्या है, आधुनिक कविता के जन्म और विकास की प्रक्रिया क्या है, आधुनिक कविता का आधुनिक समय से क्या संबंध है, आधुनिक कविता का अपने युग के अतिरिक्त अपनी परंपरा से कैसा रिश्ता है, आधुनिक कविता का भारतीय मनुष्य, भारतीय समाज, भारतीय भाषाओं से किस तरह का लगाव है, आधुनिक कविता में ब्रिटिश सत्ता, भारतीय सामंतवाद, खेतीहर और शिल्पी वर्ग, मध्यम वर्ग आदि की कैसी तस्वीर है, आधुनिक कविता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बनते हुए राष्ट्रवाद, समाज सुधार आंदोलन, पुनरुत्थानवादी चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों और स्तरों के साथ किस तरह की संगति है, आधुनिक कविता रूप और अंतर वस्तु के स्तर पर कितने मोड़ों और मेहराबों से जुड़ती मुड़ती हुई आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरती रही है। इन सवालों से जूझे बिना आधुनिक हिंदी कविता के आस्वाद और मूल्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। गदर और हिंदी नवजागरण ऐसे बिंदु हैं जिनकी पेच को समझे बिना आधुनिक हिंदी कविता के प्रस्थान और विभिन्न विकास मंजिलों की परख और पड़ताल संभव नहीं। 1850 आधुनिक हिंदी साहित्य का मोटा मोटी आरंभ समय माना जाता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐसा बहुवर्गीय आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन के शोषण के तरीकों तथा ब्रिटिश शासन विरोधी साहित्य सृजन की अंतर्वस्तु को व्यापक ढंग से प्रभावित किया। इतिहासकार और चिंतक हिंदी नवजागरण की दो धाराओं पर बहस करते हैं। एक धारा 1857 के जन संग्राम से जुड़ती है तथा दूसरी धारा 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से। इतिहासकार की नजर में पहली धारा क्रांतिकारी है तथा दूसरी धारा सुधारवादी। आधुनिक हिंदी कविता पर आरंभ से अब तक नवजागरण की इन दोनों धाराओं का प्रभाव खोजा जा सकता है। इस प्रभाव के कारण आधुनिक हिंदी कविता की वस्तु, शिल्प, भाषा, विचारधारा, संवेदना और मूल्य चेतना में भिन्नताएं देखी जा सकती है। गालिब का एक शेर है, इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुर्फ, काबह मेरे पीछे है कलीशा मेरे आगे। 19वीं सदी की उर्दू हिंदी की मिलीजुली संगठित जमीन पर पेश किया गया यह शेर जीवन और साहित्य के भीतर परंपरा और आधुनिकता की टक्कर का माकूल सबूत है। इमाम यहाँ परंपरा है तथा कुर्फ आधुनिकता। काबा को ईमान और कलीशा को यहाँ कुर्फ कहा गया है। परंपरा की ताकत पीछे खींच रही है तथा आधुनिकता की शक्ति आगे। वस्तुतः ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भी भारतीय समाज सतत ढंग से आधुनिक होता हुआ समाज है। इस बात का सबूत ऊपर की रचना में है। 1857 एक ऐसा मोड़ है जिसके बाद ब्रिटिश सत्ता का शोषण, दमन, हिंसा, लूट, बर्बरता, धूर्तता आदि अपने चरम रूप में व्यक्त होते हैं। हिंदी कविता इन मनुष्य और राष्ट्र विरोधी मूल्यों का प्रतिरोध दो दिशाओं में करती है। एक दिशा संपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव की है और दूसरी प्रतिक्रियावादी सुधार की। आधुनिक हिंदी कविता आरंभ से ही विदेशी साम्राज्य और देशी सामंती दमन तंत्र से कमोबेश लड़ती हुई आगे बढ़ती है। उसका मूल और प्रधान स्वर इन्हीं शक्तियों के विरोध में उठता हुआ दिखाई पड़ता है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी कविता की यात्रा शानदार, जमीनी और संघर्ष के ताप से भरी हुई है। इतिहास ने आधुनिक हिंदी कविता की जन्मभूमि को ऐसा अवसर प्रदान किया कि वह जनता और यथार्थ से लगातार जुड़ती चली गई। लगभग 150 वर्षों की हिंदी काव्य यात्रा में एक ओर भारतीय कविता की हजारों साल की परंपरा बोलती है, दूसरी ओर समकालीनता के स्थानिक, राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पूरी ऐन्द्रिकता एवं वैचारिकता के साथ मौजूद है। मध्यकालीनता से मुक्त करने वाली वैचारिक दृष्टि को आधुनिक बोध और आधुनिकता से जोड़ा जाता है। आधुनिक बोध और आधुनिकता की कुछ खास विशेषताएं हैं। इनका जन्म पूंजीवाद ज्ञानोदय विज्ञान और औद्योगिकरण की कोख से होता है। तर्कशीलता ऐन्द्रिक अनुभव वैज्ञानिक चेतना व्यक्तिवाद स्वतंत्रता समानता बंधुत्व धर्मनिरपेक्षता सार्वभौमिकता आदि इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आधुनिक बोध और आधुनिक मनुष्य और संसार को देखने का वस्तुगत नजरिया है जो अक्सर सबसे पहले विज्ञान या साहित्य कला में घटित होता है। क्या आधुनिक हिंदी कविता का पश्चिमी विज्ञान और पूंजीवाद से उपजे इन मूल्यों से पूरा संबंध है? नहीं, वस्तुतः उपनिवेशवाद के विरुद्ध चले सांस्कृतिक संघर्ष से आधुनिक बोध और आधुनिकता के जो मूल्य बन पाए हिंदी कविता में उन्हीं मूल्यों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। ये आधुनिकता देशज और आंतरिक मूल्यों से ज्यादा प्रभावित है। जिस तरह मध्यकालीन हिंदी कविता की केंद्रीय संवेदना और वैचारिकता धर्म है, वैसे ही आधुनिक हिंदी कविता की केंद्रीय संवेदना और वैचारिकता राजनीति है। आधुनिक हिंदी कविता राजनीतिक नियति में फसील मनुष्य की मुक्ति की आकांक्षा और संघर्ष की कविता है। इसलिए वह स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की सार्वभौमिकता वैचारिकता एवं राजनीति से प्रेरित प्रभावित कविता है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी कविता के सामने मुख्यतः दो चुनौतियां थीं: औपनिवेशिक शोषण और सामंती शोषण से भारतीय जनता की मुक्ति। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूरी औपनिवेशिक गुलामी के दौर में हिंदी कविता की ये दोनों मुख्य प्रवृत्तियां रही हैं। जाहिर है काव्य संरचना और काव्य स्रोतों के भीतर इन दोनों प्रवृत्तियों की गहरी और सूक्ष्म शिनाख्त के बिना हिंदी कविता के पूरे स्वरूप को समझना नामुमकिन है। भारतेंदु की काव्य पंक्तियाँ हैं: कठिन सिपाही द्रोह अनल जा दलबल नासी जिन भय सिर न हिलाए सकत कहु भारतवासी। 1857 की जन क्रांति की नोटिस भारतेंदु द्वारा ली जाती है जिसमें औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ गदर को कवि सिपाही विद्रोह की संज्ञा देता है। कवि विद्रोह की आग में शासक शक्ति के दलबल के विनाश की पहचान करता है तथा सत्ता के दमन से भारतवासी की तबाही की भी पड़ताल करता है। भारतेंदु युग से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी कविता के उपनिवेश विरोधी और सामंत विरोधी मूल्यों की अनेक मंजिलें दिखाई पड़ती हैं। पहली मंजिल भारतेंदु युग की है जहां देशभक्ति और राजभक्ति के घोल से राष्ट्रीय चेतना बनती हुई दिखाई पड़ती है। यह प्रवृत्ति भारतेंदु हरिश्चंद के साथ बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन प्रताप नारायण मिश्र श्रीधर पाठक आदि कवियों में कमोबेश पहचानी जा सकती है। दूसरी मंजिल त्रिवेदी युग देशभक्ति और स्वतंत्र चेतना की है जहां कविता औपनिवेशिक शासन के शोषण के स्वरूप की परख और उसका विरोध ज्यादा मुखरता से करती है। इस मंजिल के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सत्यनारायण कविरत्न राम नरेश त्रिपाठी गया प्रसाद शुक्ल सनेही मैथिली शरण गुप्त जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी आदि प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी कविता की तीसरी मंजिल छायावाद की है जिसके पुरस्कर्ता कवि प्रसाद पंत निराला और महादेवी हैं। छायावादी काव्य धारा औपनिवेशिक और सामंती मूल्यों के खिलाफ मध्यवर्गीय चेतना के स्वतंत्रता की खोज की कविता है। चौथी मंजिल देशभक्ति की ऐसी धारा की है जिसमें वर्ग चेतना ज्यादा मुखर रूप से शामिल है। माखनलाल चतुर्वेदी बालकृष्ण शर्मा नवीन सुभद्रा कुमारी चौहान दिनकर नरेंद्र शर्मा से मंगल सिंह सुमन आदि ऐसे कवियों की श्रेणी है जहां वर्ग चेतना को भी चिन्हित किया जा सकता है। पांचवी मंजिल प्रगतिवादी काव्य धारा की है जहां कविता सर्वहारा की संवेदना और वैचारिकता से वर्ग संघर्ष का चित्रण करते हुए उपनिवेशवाद और सामंतवाद का वस्तुगत विरोध करती है। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल त्रिलोचन शील मुक्ति बोध शमशेर के साथ लोक भाषाओं के अनेक कवि व्यापक साहित्य अभियान में अपनी रचनात्मक भूमिका तय करते हैं। आधुनिक हिंदी कविता की अगली मंजिल आधुनिकतावाद से प्रेरित प्रभावित है। साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद और नई कविता पर आधुनिकतावाद का गहरा प्रभाव है जिसकी एक धारा के प्रस्थानकर्ता अज्ञेय हैं। अज्ञेय की कविता का आरंभिक संबंध जहां राष्ट्रीय चेतना से है वहीं उसका विकासशील रूप अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद से गहराई से जुड़ता है। स्वतंत्रता सभ्यता के संक्रमणशील युग में 1947 से पहले और बाद के कुछ समय अंतरालों को यह प्रवृत्ति महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। राष्ट्रीय काव्यधारा की कविताओं का मूल स्वर एक होते हुए भी उस पर युगीन बोध और कवि व्यक्तित्व की गहरी छाप मिलती है। राष्ट्रीय काव्यधारा की कविता की तुलना त्रिवेदी युगीन आंतरिक भावबोध से करने पर उसकी कुछ खास विशेषताएं महत्वपूर्ण जान पड़ती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दो दशकों की राष्ट्रीय काव्यधारा पर मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं का गहरा प्रभाव है। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं जहां इतिवृत्तात्मक, आख्यान परक, उपदेश मूलक, अभिधात्मक और आवेगहीन है, वही माखनलाल चतुर्वेदी एवं राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं पर स्वच्छंदतावाद का गहरा प्रभाव होने के कारण वे आवेगमय, व्यंजनामूलक, प्रकृतिपरक एवं प्राणवंत हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा छायावाद और प्रगतिवाद के समानांतर और साथ स्वतंत्रता प्राप्ति तक बहती रही। छायावाद पर स्वच्छंदतावाद का गहरा प्रभाव है। छायावाद का मूल्यांकन करने वाली आलोचना अक्सर द्विवेदी युग की स्थूल काव्य चेतना की प्रतिक्रिया में छायावाद का उद्भव मानती है। वस्तुतः कला के दो युगों या वादों का संबंध केवल विरोध और प्रतिक्रिया का ही नहीं होता, बल्कि सततता एवं आंतरिक गतिशीलता का भी होता है। कहना न होगा कि द्विवेदी युग की काव्यधारा का एक हिस्सा स्वच्छंदतावादी था तथा जिसका प्रभाव छायावाद पर पड़ता है और छायावादोत्तर कविता पर भी। माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी जैसे स्वच्छंदतावादी कवि की कविता द्विवेदी युग छायावाद और छायावादोत्तर कविता की धाराओं के आसपास लगातार गतिशील रहती हैं। ये कविताएं छायावादोत्तर काव्यधारा से जुड़ते हुए दिनकर बालकृष्ण शर्मा, नवीन सुभद्रा कुमारी चौहान, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि कवियों को गहराई से प्रभावित करती हैं। स्वच्छंदतावाद की कुछ बुनियादी विशेषताएं होती हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर दिनकर तक की कविताओं में स्पष्ट देखी जा सकती हैं, जैसे काव्य खनिज का भरपूर विस्तार, प्रकृति से गहरा लगाव, प्रेम सशीम और असीम से एक साथ आकर्षण, यथार्थ को कल्पना से जोड़ना, भावुकता, व्यक्तिक स्वतंत्रता की खोज, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार, सामंती मूल्यों से विद्रोह आदि। छायावादोत्तर स्वच्छंदतावादी राष्ट्रीय काव्यधारा में ये प्रवृत्तियाँ बहुआयामी रूपों में पाई जाती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला, उसकी कुछ पंक्तियों का उदाहरण द्रष्टव्य है। डूबो के आंसू धोती रवि किरणों पर, मोती बिखलाती विंध्या के झरणों पर, ऊंचे उठने के वर्धारी इन मन पर, ब्रह्मांड कपाती उस उदंड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा संजीला देखा। कोकिला स्वयं प्रकृति है, वह अपने मीठे स्वरों से डूबों के आंसू धोती है, विंध्याचल के झरनों पर मोती बिखराती है, उदंड पवन पर सवार हो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। कविता का यह प्रकृति प्रेम उदात्त है, रूढ़ी भंजक है, व्यक्ति ही नहीं समष्टि का भी मुक्ति कामी है। स्वच्छंदतावाद की विशिष्टताओं से भरी हुई ये पंक्तियाँ अपनी कलात्मकता में छायावाद से होड़ लेती हैं और लोकप्रियता में आम जनता का कंठहार बनती हैं। दिनकर पर स्वच्छंदतावाद का कितना गहरा प्रभाव है, इसका सबूत रेणुका, नीलकुसुम, रसवंती की अधिकांश कविताएं हैं। छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्यधारा के स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति वस्तुतः छायावाद के उन पतनशील मूल्यों के खिलाफ पैदा हुई थी, जिनमें 1930 के बाद अतिशय कल्पनाशीलता, संकीर्ण व्यक्तिकता, अभिजात सौंदर्य बोध, वायवी यथार्थ, तत्सम युक्त संश्लिष्ट सामाजिक भाषा, अनंत असीम और रहस्य के परिलोक में भटकावादी की विशिष्ट गुण दिखाई पड़ने लगे थे। दिनकर अपनी आलोचना पुस्तक मिट्टी की ओर में लिखते हैं, बहुत दिनों से एक गांव दूसरे गांव की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है, इनके हृदय की व्यथाओं को देखो, बैलों को लेकर खेत से लौटने वाला किसान धीरे धीरे क्यों चल रहा है, दिवाली के दिन सुब्रन के घर के चिराग शाम को ही क्यों बुझ गए, और तब प्रकृति के उपादानों से जुड़ते हुए वे वन फूलों की ओर चलते हैं। चलो जहाँ निर्जन कानन में वन्य कुसुम मुस्कुराते हैं, मलने अनिल भूलता भूलकर जिधर नहीं अली जाते हैं, आज यह राजवाटिका छोड़ चलो कवि वन फूलों की ओर। छायावाद की कविता राजवाटिका के फूलों से भरी हुई कविता है, जबकि मिट्टी और झोपड़ी की ओर मुड़ता हुआ सामाजिक राजनीतिक यथार्थ 1930 के बाद हिंदी कविता की अंतर्वस्तु भाषा और अभिव्यक्ति भंगिमा को लगातार जनोन्मुख बनाता है। प्रकृति तो छायावादोत्तर प्रगतिवाद और प्रयोगवादी तीनों काव्य धाराओं में मौजूद है, लेकिन यथार्थ और बोध से उसके संबंध अलग अलग हैं। छायावाद की प्रकृति अभिजात भव्यता से लवरेज है। छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रकृति राष्ट्रीय चेतना और स्वातंत्र्य उद्घोष का हथियार बन गई है। प्रगतिवादी प्रकृति श्रम और संघर्ष के सौंदर्य से सिंचित है तथा प्रयोगवादी प्रकृति की चेतना में व्यक्तिक घुटन एवं आधुनिकता से भरे दर्द की तीखी लहर उठ रही है। पंत का स्वर्णाभ शिखर आसमान में सोने की धूल उड़ाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कोकिला और दिनकर का हिमालय औपनिवेशिक दासता की जंजीरें काटने का स्वर रचते हैं। नागार्जुन और केदार के लहलहाते खेत खेतिहर जीवन में उल्लास और संघर्ष के रंग भरते हैं तथा आगे के लिए बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का यथार्थ से ऐसा ठोस रिश्ता है जहाँ प्रकृति का रोमांटिक रूप चल नहीं पाता। हमेशा यथार्थ की तरह कविता की आगामी जमीन ज्यादा कड़ी ठोस और बौद्धिक संश्लिष्ट होती जाती है। औपनिवेशिक व्यवस्था और सामंती ढांचे से मुक्ति का संघर्ष आधुनिक खड़ी बोली हिंदी कविता का प्रमुख एजेंडा रहा है। राष्ट्रीय काव्य धारा जहाँ उपनिवेश विरोधी मोर्चे पर ज्यादा सक्रिय रही, वहीं प्रगतिवादी काव्य धारा की मुठभेड़ सामंतवाद विरोधी मोर्चे पर अधिक तीखेपन के साथ हुई। राष्ट्रीय काव्य धारा और प्रगतिवाद पर विचार करते हुए आलोचना को इस जिम्मेदारी से नहीं चुराना चाहिए। 20वीं सदी का तीसरा और चौथा दशक उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों का अंतरराष्ट्रीय दशक था। शेष विश्व के साथ भारत में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बिगुल बज चुका था। कांग्रेस के मंच से एक और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और तरह तरह के समझौते संघर्ष चल रहे थे। वहीं जनवादी मूल्यों के संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों एवं किसान मजदूर आंदोलन की दिशा तय कर रहे थे। 1930 के आरंभ में कांग्रेस द्वारा पूर्ण राज की घोषणा, भगत सिंह एवं उनके साथियों की शहादत से उपजा आक्रोश, किसानों पर बढ़ते अत्याचार, अकाल, खेती की तबाही, किसान मजदूर के नए नए संगठनों का उदय, अंबेडकर का दलित मुक्ति आंदोलन, कांग्रेस द्वारा औपनिवेशिक शासन में हिस्सेदारी, द्वितीय विश्व युद्ध आदि ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने हिंदी कविता के कथ्य और रूप को बहुआयामी स्तरों पर रूपांतरित किया। छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य धारा के पास उपनिवेशवाद विरोध का सबसे मजबूत हथियार राष्ट्रवाद था। माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, नवीन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, अंचल, भवानी प्रसाद मिश्र आदि कवियों के काव्य में राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों की पहचान की जा सकती है। राष्ट्रवाद का कोई एक रूप नहीं होता। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, सुधारवादी राष्ट्रवाद, जन राष्ट्रवाद, पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद आदि राष्ट्रवाद के विचार धारात्मक प्रकार हैं। छायावादोत्तर काव्य धारा में इन सभी रूपों की छुटपुट पहचान हो सकती है, लेकिन उनका मूल स्वर जनोन्मुख क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है। माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर की कविताओं में इन स्वरों की शिनाख्त हो सकती है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में बलिदानी राष्ट्रवाद का अनूठा स्वर मिलता है। उनकी इच्छा पंक्तियों की अत्यंत लोकप्रिय कविता है पुष्प की अभिलाषा। उसकी आखिरी पंक्तियों को देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कवि की आकांक्षा क्रांतिकारी चेतना से जुड़ती है। मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाना बलिदानी भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। वीड़ा के तार छायावाद में भी बजते हैं और प्रयोगवाद में भी। निराला स्वयं वीड़ा न बजाते हुए वीड़ावादिनी से नवीन वर मांगते हैं तथा अज्ञे की असाध्य वीड़ा इस तरह बजती है कि हर एक को अलग अलग स्वर सुनाई पड़ता है। राष्ट्रीय काव्यधारा की वीड़ा वस्तुतः राष्ट्रीय वीड़ा है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय वीड़ा से औपनिवेशिक मुक्ति की गूंज निकलती है। राष्ट्रीय वीड़ा स्वाधीनता संघर्ष है जिसमें हर बलिदानी चेतना एक तार की तरह है, कभी भी एक तार में बदल जाता है। तार पर पड़ी मार से राष्ट्रवाद का गुंजार निकलता है। क्या राष्ट्रीय मधुर वीणा में टूटा फूटा तार न हो, कापे हिले खींचे झुक जाए, किसी भांति इनकार न हो, विश्वदेव सब गूंज उठे क्या अब भी बल संचार न हो, पड़े तार पर मार कहो क्या वीणा से झंकार न हो। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला कविता 1930 में तब लिखी गई थी जब वे सेंट्रल जेल जबलपुर में स्वाधीनता अभियान के अपराध में बंद थे। संवाद शैली में रचित यह कविता कैदी और कोकिला के माध्यम से पूरे ब्रिटिश शासन की काली करतूतों का पर्दाफाश करती है। इस कविता का केंद्रीय स्वर गुलामी की यातना और उससे मुक्ति की छटपटाहट है। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अर्धरात्रि यहाँ परतंत्रता का प्रतीक है और कोकिल स्वाधीन चेतना का। दवानल परतंत्रता के जंगल में सुलगती फैलती हुई स्वतंत्रता की आग है। पूरी कविता में युगबोध के साथ कवि का आवेगमय क्रांतिकारी व्यक्तित्व सम्मिलित है। उल्लाहना स्वाधीन भारत में भारतीय सत्ता द्वारा अपनी ही जनता के शोषण दमन के विरुद्ध प्रतिरोध रचती हुई कविता है। उल्लाहना स्वाधीनता के गर्भ से पैदा हुई राजनीतिक सत्ता से है जो अपने ही जनगणमन की आकांक्षा को कुचलती है। दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिसके प्रमाण में उनकी हाहाकार, दिगंबरी, वन फूलों की ओर, दिल्ली, हिमालय, विपथगा जैसी कविताएं देखी जा सकती हैं। दिनकर की हिमालय आख्यान मूलक और आह्वान परक कविता है। आवेग, तेज, ओज और ऊर्जा से भरी हुई संबोधन शैली में रचित यह कविता एक और हिमालय के माध्यम से भारतीय अस्मिता की ऊंचाई की खोज करती है तो दूसरी ओर अपनी गौरवशाली परंपरा के नष्ट होने पर आक्रोश व्यक्त करती है। कविता में मिथकों और प्रतीकों का एक और जनतंत्रीकरण हुआ है। वहीं यूरोपीय आधुनिकता को कड़ी चुनौती भी मिली है। कविता गांधीवादी राष्ट्रवाद से मोहभंग की मुद्रा अपनाती हुई क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का आह्वान करती है। रे रोक युधिष्ठिर को न, यहाँ जाने दो उनको स्वर्ग दी, और फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। विपदगा दिनकर की युग धर्मी चेतना का विस्फोट है। स्वाधीनता की चेतना विपदगामिनी के रूप में यहाँ मौजूद है जो पूरी सृष्टि की गुलामी और जड़ता का अपनी शक्ति से सर्वनाश करना चाहती है। दुनिया के नीरो सावधान, दुनिया के पापी जार सजग, जाने किस दिन फुंकार उठे पद्दलित काल सर्पों के फन। औपनिवेशिक हुकूमत के जुल्म, क्रूरता, लूट खसोट, दमन अभियान की पड़ताल करते हुए विपत्का उन कारणों को ढूंढ लेती है जिनसे ब्रिटिश राज के बदन पर तेल फुलेल चमक रहा है। विषमता के द्वंद को अभिव्यक्त करती ये पंक्तियाँ गौरतलब हैं। स्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, मालिक जब तेल फुलेल पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, झन झन झनन झन। दिल्ली गुलाम भारत में रचित ब्रिटिश शासन विरोधी कविता है। दिल्ली जनता के खून पसीने को चूसकर रोशनी में नहाई हुई बेशर्म सत्ता प्रतिष्ठान का प्रतीक है। यह आख्यान परक कविता है जिसमें मुगल कालीन शानदार सल्तनत के जबरदस्त प्रशंसा तथा फिरंगे शासन की बर्बरता का विश्लेषण भी। भारतेंदु से चली 1857 की काव्य परंपरा के एक शानदार बानगी सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसे की रानी है तो दूसरी दिनकर की दिल्ली। छीनी सजी साजी व दिल्ली अरी बहादुर शाह जफर की, और छीनी गद्दी लखनऊ की वाजिद अली शाह अख्तर की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शासन और शोषण का सामाजिक आधार उसके द्वारा निर्मित नया सामंतवाद ही था। वस्तुतः औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज के रक्त और पसीना चूसने के लिए सदियों से चले आ रहे भारतीय कृषि ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक खास तरह का खेतिहर ढांचा बनाया जिसमें जमींदारियों की कई तहें थी। ब्रिटिश राज का खजाना भारतीय खेतों की लूट से भरता था। कहना न होगा कि तब भारत की लगभग 90% आबादी खेतिहर थी। राष्ट्रीय काव्यधारा की कविता केवल औपनिवेशिक विरोध की कविता को होकर कैसे रह सकती थी। उस काव्यधारा ने भारतेंदु युग से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक लगातार खेतिहर वर्ग के दमन, शोषण और संघर्ष का मार्मिक चित्रण किया। मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती का एक खंड किसान पर आधारित है। वहीं उन्होंने किसान जीवन पर किसान नामक काव्य पुस्तक ही रच दी। सामंतवाद विरोध की कविता की परंपरा का गहरा संबंध राष्ट्रीय काव्यधारा और प्रगतिवाद से है।
1857 से 1947 के बीच हिंदी क्षेत्र में अनेक किसान आंदोलन हुए। गदर वस्तुतः गहरे स्तर पर किसानों और किसान सिपाहियों का ही संग्राम था। आदिवासी किसानों के अनेक आंदोलनों के अतिरिक्त चंपारण सत्याग्रह, बिजौलिया सत्याग्रह, अवध का किसान आंदोलन, एका आंदोलन आदि की एक लंबी परंपरा है, जिसका प्रभाव कमोवेश हिंदी कविता पर पड़ा। प्रगतिवाद से पहले राष्ट्रीय चेतना की कविता में जो किसान चित्रण हुआ, हिंदी आलोचना ने अब तक उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया है। हिंदी की लोक भाषाओं में बड़ी संख्या में कविता निर्माण के अतिरिक्त मुख्य धारा के कवियों द्वारा भी किसान कविता रची गई। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन दिनकर, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र आदि ने किसान कविताएं रची हैं। सामंती संरचना का विरोध छायावाद ने भी किया। निराला छायावाद के भीतर किसान चेतना के अग्रणी कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन मध्य देश के सामंती व्यवस्था के विरोध में समर्पित था और उनके पत्रकारिता भी। अंग्रेजी राज्य में सामंतों द्वारा किसान शोषण पर उनकी प्रसिद्ध कविता क्रंदन द्रष्टव्य है।
खा रहे हो अन्य मरणासन, मेरी हड्डियों का स्वाद कैसा लग रहा। खा रहे हो फल संभालो, रक्त मेरा भर रहा है सब फलों में, और वो भी झर रहा जो झरा करता है भाग्य दृग गजलों में। कंद मत खोदो, हमारे हैं गड़े बच्चे उन्हीं के पास भगवान। वायु का स्वर है सिसकियां हैं हमारी और क्रंदन। दिनकर की कविता में सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष ने विस्तार से स्थान पाया है। 1938 में छपित हुंकार में हाहाकार कविता शामिल है। हाहाकार में किसान जीवन की फटेहाली और गरीबी का चित्रण करते हुए दिनकर कहते हैं, जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं। छूटे बैल के संग कभी जीवन में ऐसा आयाम नहीं। भूख में जीव शक्ति, भुज में जीवन में सुख का नाम नहीं। पसंद कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं। यह सवाल विचारणीय है कि जिस ब्रिटिश हुकूमत का सामाजिक आधार भारतीय सामंतवाद था, उन दोनों के उत्पीड़न और लूट से परेशान हाल किसान आबादी का जितना लेखा जोखा हिंदी की मुख्य धारा वाली कविता को करना चाहिए था, उसने क्यों नहीं किया। राष्ट्रीय काव्य धारा की कविता में किसान प्रश्न विखंडित और अमूर्त ढंग से उठाया गया है। सामंतवाद से मुक्ति का मतलब था भारतीय जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर मुक्ति। दुर्भाग्य से प्रगतिवाद के पहले भारतीय राजनीति और हिंदी कविता दोनों इन मोर्चों पर पूरी सफलता से संघर्ष करने में अक्षम रही। छायावाद से प्रगतिवाद को जोड़ने वाली काव्य अस्मिता छायावादोत्तर काव्य धारा है। यह गौरतलब है कि यदि छायावाद और प्रगतिवाद के बीच छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य धारा न होती तो प्रगतिवाद का मौजूदा स्वरूप कैसा होता। मैनेजर पांडे की टिप्पणी विचारणीय है। हिंदी कविता या आलोचना में हिंदी छायावादोत्तर पीढ़ी कहा जाता है। उसने चार काम एक साथ किए। एक तो वह काव्य भाषा को बोलचाल की भाषा के करीब ले आई। दूसरा काम यह किया कि जीवन की सच्ची अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कविता में शुरू की, जिनका समाज और राष्ट्र से गहरा रिश्ता था। तीसरा काम किया जो काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। उसने कविता में सहजता के गुण का विकास किया, कविता आसानी से समझ में आ सके ऐसी भाषा और शैली में लिखना हुआ। चौथा काम यह है कि स्वच्छ अभिव्यक्ति ऐसी अभिव्यक्ति है जो कहीं भी दुराव छिपाव को महत्व नहीं देती है। इन चारों कामों का परिणाम हुआ कि कविता जनता से जुड़ी, जनता ने कविता का स्वागत करना शुरू किया। कलात्मकता और लोकप्रियता का प्रश्न कविता का अनिवार्य प्रश्न है। आजकल हिंदी आलोचना में सहजता बनाम जटिलता का गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मानो जो कविता अबूझ पहेली की तरह हो वही सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुतः सहजता और जटिलता कविता के मूल्य न होकर अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। कविता में कलात्मकता और लोकप्रियता दोनों गुण एक दूसरे के अविरोधी हैं। एक रचनाकार की जीवन दृष्टि, सामाजिक सरोकार, विचार और कविता रचने का उद्देश्य उसकी कविता की भाषा और शिल्पी की दिशा तय करते हैं। कविता की लोकप्रियता का संबंध उसके पाठकीय विस्तार से है और कलात्मकता का संबंध उसकी नई संवेदनशील अभिव्यक्ति से। मैनेजर पांडे द्वारा बताए गए चारों विशेषताओं के कारण छायावादोत्तर कविता की शुरुआती धारा ने प्रगतिवाद की कविता को जन कविता में बदल दिया। कलात्मकता और लोकप्रियता की एकता के कारण छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य धारा और प्रगतिवादी काव्य धारा दोनों ने जो जनमानस में जगह पाई, उसका मुकाबला न छाया मायावाद कर पाया और न ही आधुनिकतावाद से प्रभावी रचना कर पाई। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना और पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसान जीवन के कथाकार प्रेमचंद ने की तथा अखिल भारतीय किसान सभा के भारतीय किसान आंदोलन के अगुवा सहजानंद सरस्वती ने। प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा, साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भक्ति आंदोलन के बाद अखिल भारतीय सांस्कृतिक साहित्यिक आंदोलन का स्वरूप प्रगतिवाद को ही हासिल हुआ। प्रगतिवाद केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी था। प्रगतिवाद की विचारधारा मार्क्सवाद की विचारधारा थी। वह पूंजीवाद और सामंतवाद का विरोधी था। वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष में उसकी निष्ठा थी। राष्ट्रीयता के साथ अंतरराष्ट्रीयता का बोध उसके चिंतन और दर्शन का हिस्सा था। वर्ग विभाजित समाज में उसकी पक्षधरता किसान मजदूर के साथ थी। वह श्रमशीलता और सर्वहारा का पक्षधर था। छायावाद की भव्य इमारत पंत के युगांत की घोषणा के साथ ही ढह गई, जिसकी हास्यशील रूप 1930 के बाद ही दिखने लगा था। 1936 में प्रेमचंद गोदान और कफन लेकर आते हैं और ठीक उसके बाद पंत की युगवाणी से प्रगतिवादी काव्य का सूरज उदित होता है। पंत अपनी पत्रिका रूपाभ को प्रगतिवाद के मुखपथ के तौर पर पेश करते हैं। छायावादी कवियों में पंत और निराला प्रगतिवाद की आधारशिला रखते हैं। वहीं राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों दिनकर, नवीन, नरेंद्र शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी पर प्रगतिवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ता है। इनकी कविताओं में किसान मजदूरों का चित्रण और वर्ग संघर्ष की गूंजें अभिव्यक्त होती हैं। निराला की अणिमा, बेला और नए पत्ते की कविताएं गहरी आंतरिकता और तीखे वर्गीय बोध के साथ हमारे सामने मौजूद होती हैं, जबकि पंत ग्राम्या की धूल को बौद्धिक धरातल पर ही महसूस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। नागार्जुन केदार, त्रिलोचन की अगली जमीन को पुख्ता बनाने में इन कवियों का विचारणीय योगदान है। प्रगतिवादी कविता की पहली विशेषता ऐतिहासिक चेतना का सृजन है। प्रगतिवादी कविता शाश्वत, सनातन और समयहीनता को जगह नहीं देती। सत्ता की बर्बरता और विश्लेषण वहाँ तीखेपन के साथ है। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता शासन की बंदूक सत्ता की दमन नीति का विरोध हिटलरी शासन से संबंध जोड़कर करती है। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूँ, नभ में विपुल विराट से यह शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थू, जिसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक। प्रगतिवादी कवि का प्रकृति और परिवेश से गहरा लगाव है। हर कवि की कविता का एक खास भूगोल है, लोक है, संस्कृति है और इन चीजों को व्यक्त करने वाली बोली वाणी भी है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं बुंदेलखंड की नीले पंखों वाली चिड़िया बुड्ढे बन बाबा के लिए उसका मधुर गान, उसकी चोंच में दबे हुए जुंडी के दाने एवं जल के मोती तथा उस दर्बीली चिड़िया का कवि की संवेदना व निजत्व में बदल जाना बहुत ही मनमोहक परिदृश्य उपस्थित कर हैं। छायावादी कविता में प्रकृति अक्सर निर्जन और खेत गांव से दूर दिखाई पड़ती है। प्रगतिवादी कविता की प्रकृति अक्सर किसान और गांव से जुड़ी हुई संस्कृति से संबंध रखती है। उसका परिवेश स्थानीय रूप रंग में पगा होता है। केदार की कविता चंद गहना से लौटती बेर पर विचार करते हुए देखा जा सकता है। कविता के शीर्षक में मौजूद चंद गहना स्थानिक भूगोल का बोध कराता है। महानगरी सभ्यता के समानांतर प्रकृति और खेतिहर जीवन से जुड़ी संवेदना इस कविता का केंद्रीय स्वर है। यहाँ प्रेम का देशज रूप फसलों के माध्यम से है। साधारण खेतिया जीवन के प्रेम प्रसंग को चित्रित करने के लिए कवि का ठिगना चना अपने शीश पर गुलाबी फूल का मुरैठा बांधकर हटीली असर वाली अलसी को दिल दे बैठता है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद से पहले खेतिया जीवन का ऐसा लोकधर्मी प्यार कहीं नहीं मिलता। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। किसान वर्ग के दुखों की खोज के साथ उसकी मुक्ति का स्वर भी प्रगतिवाद आदि कविता की जरूरी खासियत है। भोजपुर कविता की कुछ पंक्तियों से किसान मुक्ति के प्रतिवादी अभियान का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह भृतिका जन कवि में अब प्राण भरेगी, चमत्कार है इस माटी में। आओ आओ तुम भी आओ, देखो जन कवि भाग न जाओ, तुम्हें कसम है इस माटी की। वर्ग चेतना, वर्ग बोध और वर्ग संघर्ष प्रतिवादी काव्यधारा की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषताएं हैं। प्रतिवादी कविता मानती है कि हमारा समाज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरों पर वर्गों में बंटा हुआ है, जहां शासक और शोषक वर्ग की नींव आम जनता के शोषण पर टिकी हुई है। वर्ग विभाजन को खत्म किए बिना दुनिया का प्रत्येक मनुष्य समानता और स्वतंत्रता का पर्याप्त उपभोग नहीं कर सकता है। शोषण विहीन समाज के लिए वर्ग संघर्ष इतिहास की बुनियादी जरूरत है। केदारनाथ अग्रवाल की मैंने उसको जब जब देखा कविता विचार और कला दोनों दृष्टि से वर्ग संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। कवि के लिए सर्वहारा वर्ग लोहे की तरह मजबूत है, वह संघर्ष और श्रम की आग में लोहे की तरह तपता है। तपने के बाद उसके कर्म और विचार लोहे की तरह गलते हैं, द्रव्य में बदल कर वे पुनः नए सांचे में ढल जाते हैं। लोहा केवल तपता, गलता और ढलता ही नहीं, बल्कि शोषण की व्यवस्था को मिटाने के लिए गोली में बदल कर उतनी ही रफ्तार से चल भी सकता है। यह सब कबीर की तरह ही आखिन देखी है। सामाजिक यथार्थ की बहुरंगी अभिव्यक्ति प्रतिवादी काव्यधारा की विकास यात्रा का अहम पहलू है। स्त्री, दलित, श्रमिक, भूख, गरीबी, अंधविश्वास, पाखंड, बाण, अकाल, सूखा आदि सामाजिक मुद्दों की यथार्थ परक अभिव्यक्ति त्रिलोचन, नागार्जुन, केदार, शील और अन्य लोक धर्मी कवियों में भरपूर मात्रा में मौजूद है। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद सामाजिक यथार्थ को चित्रित करने वाली मर्मस्पर्शी कविता है। कई दिनों चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। आजादी के ठीक बाद 1952 में रचित यह कविता हिंदी की आधुनिकतावादी आलोचना के सामने कई चुनौतियां एक साथ पेश करती हैं। 8 पंक्तियों की कविता का प्रथम खंड अकाल के भयावह परिदृश्य का चित्र रखता है तथा दूसरा खंड अकाल के सिर्फ बाद जीवन में आई हलचल का रेखांकन करता है। सादगी और सरलता के शिल्प में सामाजिक यथार्थ की ऐसी वानगी दुर्लभ है। कला और लोक प्रीता की एकता वाली यह कविता यह साबित करती है कि जटिलता रचना का मूल्य नहीं होती। यहाँ समकालीन कविता के कवि वीरेंद्र दंडगवाल की केदार पर की गई टिप्पणी सटीक बैठती है। रचना के अर्थ, आशय, उसकी व्यग्रताएं, संवेदनात्मक संघनता, सत्य और जीवन बहुस्तरीयता को समझने समझाने की उसकी क्षमता को दरकिनार कर इस बात की भी उपेक्षा कर कि कवि का मंसूबा कहाँ और किस तक संबोधित होने का है। जटिलता अथवा सरलता को ही काव्य मूल के बतौर स्थापित करने की आलोचनात्मक चेष्टाओं ने खासकर हिंदी कविता का काफी नुकसान किया है। अकाल और उसके बाद कविता के अर्थ संकेत पर भी कुछ विचार करना चाहिए। प्रथम 4 पंक्तियों में अकाल का जो दृश्य है वह निर्जीव और सजीव वस्तुओं में रचा गया है। वहाँ मनुष्य नहीं है। चूहे का रोना और चक्की का उदास रहना घर के भीतर अन्य के कण नहीं होने का पुख्ता सबूत है। चूहे और चक्की के पास गली की कमजोर कानी कुतिया भूख से और कमजोर होकर सोई हुई है। सामान्यतः दीवार पर छिपकलियों के आसानी से कीड़े पतंगे मिल जाते हैं। अकाल इतना जानलेवा है कि इक्के दुक्के कीड़े पतंगों के लिए दीवारों पर छिपकलियों को गश्ती लगानी पड़ रही है। भूरे रंग वाली छिपकलियों की गश्ती वर्दी वाले कर्फ्यू की याद दिलाती है। चूहे वहाँ से भोजन पा सकते हैं जहाँ कुत्ते और छिपकली पहुँचने की सोच भी नहीं सकते। आलम यह है कि चूहों का हाल भी शिकस्ता हाल है। शिकस्तगी यानी चूहों की दुनिया में भी अनाज की तंग हाली। छप्पर के ऊपर धुओं का उठना चूल्हे के चेहरे पर आग उगने का प्रमाण है। कौवों को खबर हो गई है, इसलिए मुंडेरे पर उनके पंखों की फड़फड़ाहट और खुशलाहट दिखने लगी है। घर भर की आंखों में चमक दाने आने के बाद दिखाई पड़ती है। कविता के घर में आदमी तो रहता ही है, लेकिन यहाँ चूल्हा, चक्की, कुतिया, छिपकली, चूहे, कौवे आदि के लिए भी भरपूर जगह है। हिंदी की यह एक युगांतकारी कविता है। राजनीतिक चेतना प्रतिवादी काव्यधारा की खास विशेषता है। स्वतंत्रता के बाद की देसी सत्ता के अंतर विरोधों की छानबीन यहाँ लगातार चलती है। केदार और त्रिलोचन जहाँ गहरे संदर्भों में राजनीति की विडंबना का विश्लेषण करते हैं, वहीं नागार्जुन की कविता में व्यंग के माध्यम से राजनीति पर हमला होता है। नागार्जुन का व्यंग इतना सूक्ष्म सदा हुआ होता है कि सच ही उन्हें आधुनिक कविता का कबीर कहा गया है। नागार्जुन की सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की कविता मास्टर में आजादी के बाद की राजनीति का पाखंडी रूप देखा जा सकता है। प्रभुता पाई काही मद नाही, तुलसी बाबा भले कह गए, जिसमें वाजिद अली बह गया उसी बाढ़ में आप बह गए, आप बने शिक्षा मंत्री तो देहातों के स्कूल ढह गए, हम तो करते हैं पड़ौनी, जेल न जाके यही रह गए। यह एक आख्या परक और संबोधन शैली में रचित कविता है। स्वतंत्रता के बाद गाँव में पहुँची हुई शिक्षा की दुर्दशा और शिक्षक की बदहाली के बहाने एक और पूरे सामाजिक जीवन की जर्जर दशा का चित्रण है, वही राजनीति के जन विरोधी रवैये एवं चरित्र का व्यंगपूर्ण खुलासा भी है। प्रेम के कई रूप प्रतिवादी कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादी कविता में प्रेम के बहुआयामी छवियों पर अलग से विचार होना चाहिए, जहां प्रेम का एक रूप गृहस्थ जीवन से जुड़ता है, दूसरा रूप प्रेम के स्वच्छंद मानवीय संबंध से, तीसरा रूप व्यक्ति एवं मानवेतर प्राणियों से, चौथा रूप जनता से। नागार्जुन की कविता है यह दंतुरिक मुस्कान। आधुनिक हिंदी कविता में बाल प्रेम का इतना आत्मीय चित्रण संभवतः दूसरी जगह मिलना दुर्लभ है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवि विमान। नवजात शिशु के दंतुरित मुख से फूटने वाली मुस्कान मृतक में भी जान फूंक सकती है। अनुभव बोध और सघन आवेग से भरी इस कविता में एक और बाल सुलभ जीवन का धूल दूसरे चित्र है। पार्विक प्रेम का वीरस से भरा हुआ रूप है, दूसरी ओर पुरुष सत्ता का अपराध बोध भी है। कविता के बारे में महान कवि मायकोशकी का मानना था कि कविता नाटक घरों और स्टेडियम में गूंजनी चाहिए, रेडियो से लगातार फूटनी चाहिए, अखबारों की सुर्खियां बननी चाहिए, पर्चों पोस्टरों और यहां तक कि मिठाई के डब्बों पर मौजूद रहनी चाहिए। राष्ट्रीय कविता और प्रतिवादी काव्यधारा को हिंदी में यह सौभाग्य मिला है कि वे जनता के कंठ और हृदय में निवास करती है। हिंदी में तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से प्रयोगवाद के आरंभ का इतिहास शुरू होता है, जबकि परिमल मंच के सदस्यों द्वारा संपादित नए पत्ते 1953, नई कविता 1954, निकष प्रतिमान के प्रकाशन में नई कविता का अज्ञे इन दोनों काव्य प्रवृत्तियों के पुरोधा कवि माने जाते हैं। आजादी के आसपास एक ऐसी काव्य पीढ़ी तैयार होती है जिसके भीतर नई राहों के अन्वेषण की बेचैनी दिखाई देती है। साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों के उदय के ठोस कारण हैं। प्रतिवादी आंदोलन का संबंध स्वतंत्रता संग्राम से था, लेकिन आजादी भारतीय मध्यवर्ग के सामने राजनीतिक और सामाजिक आदर्श की साफ तस्वीर नहीं दिख रही है। आजादी विभाजन की कीमत पर मिली थी, जिसके सामने दो सबसे बड़े प्रश्न थे, किसकी आजादी और कैसी आजादी। इन दोनों प्रश्न का उत्तर सत्ताधारी वर्ग के पास नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर सामंती मूल्यों और ढांचों को तोड़े बिना आधुनिक समाज बनाने का सपना राजनीति के द्वारा दिखाया जा रहा था, जो असंभव था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिटलर और मुसोलिनी के फासिस्ट नरसंहार ने दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया के मनुष्यों की तबाही ने तथा साम्राज्यवादी देश अमेरिका व समाजवादी देश सोवियत संघ के बीच के तनाव ने हिंदी लेखकों पर गहरा प्रभाव डाला। हिंदी लेखकों ने महसूस किया कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, आधुनिक बोध, मानव मूल्य के नाम पर चलने वाली पुरानी विचारधारा और पुराना यथार्थ अब बासी हो गया है। प्रगतिवादी कविता से आधुनिकतावादी कविता का विरोध एवं जुड़ाव का संबंध है। हमें यह फर्क करना चाहिए कि आधुनिकता जीवन को देखने का नया नजरिया है, जबकि आधुनिकतावाद हिंदी साहित्य की एक विचार प्रवृत्ति है। प्रयोगवादी और नई कविता में प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि भी शामिल थे, इसका प्रमाण तार सप्तकों में शामिल कवियों की सूची है। प्रतिवादी कविता के स्थूल यथार्थ के विरुद्ध नई कविता की प्रगतिशील काव्यधारा का विकास होता है, जिसके प्रतिनिधि कवि मुक्तिबोध और शमशेर हैं। दूसरी ओर व्यक्ति स्वतंत्र अस्तित्ववादी और मार्क्सवाद विरोधी काव्य प्रवृत्तियां बनती हैं, जिनके प्रतिनिधि कवि अज्ञे हैं। नई कविता नई भाषा, नई कथन भंगिमा, नए छंद और नई संवेदना की कविता है। प्रयोगवाद और नई कविता की कुछ खास विशेषताएं हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। नई कविता की प्रगतिशील धारा व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज समाज की स्वतंत्रता और परिवर्तन के लिए करती है। दूसरी ओर अस्तित्ववादी काव्यधारा समाज की स्वतंत्रता परिवर्तन के लिए करती है। दूसरी ओर अस्तित्ववादी काव्यधारा समाज एक नदी मानती है तथा व्यक्ति के अस्तित्व और अस्मिता की खोज उसके द्वीप की तरह करना चाहती है। उनका मानना है कि समाज और व्यक्ति की अस्मिता और पहचान यदि अलग नहीं रहेगी तो व्यक्ति समाज के जल प्रवाह में बह जाएगा। प्रगतिशील आलोचना ने नई कविता की प्रवृत्तियों को जितनी विवेचना की है उससे कम महत्वपूर्ण विचार नई कविता के कवि अज्ञेय और मुक्तिबोध के नहीं है, उन्हें भी देखना चाहिए। प्रयोगवादी कविता के कुछ खास विशेषताएं थी, जैसे विचारधारा से मुक्ति, सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण, कविता में व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा तथा नई यथार्थ दृष्टि। नई कविता की भी कुछ प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं, व्यक्ति स्वातंत्र की खोज, जीवन में आस्था और अनास्था का प्रश्न, प्रकृति प्रेम का व्यक्ति मूलक बोध, अभूति परकता आदि। नामवारसी ने इस दौर की कविता पर विचार करते हुए कहा है कि प्रयोगवाद का उदय ही मोहभंग से हुआ है, इसलिए इसमें छायावादी कल्पनाशीलता के विपरीत यथार्थ का आग्रह अधिक था। प्रयोगवाद और नई कविता के कवि बौद्धिकता एवं रचनात्मक ईमानदारी को ज्यादा महत्व देते हैं। मुक्ति बोध जहाँ बौद्धिकता को संविदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना तक ले जाते हैं, वहीं अज्ञे आत्मिक अनुभूति तक। अज्ञे का एक कथन है, जैसे जैसे हमारी बौद्धिक सहानुभूति गहरी होगी, अभिव्यक्ति में व्यंजना आती जाएगी, पसीदा संवेदन कम होता जाएगा, जो किशोर कविता में होता है। जहाँ तक लेखक का संबंध है, ईमानदारी का मतलब यही है कि वह बौद्धिक विकलता को लेकर जिए और उसे अस्वीकार न करे जो ज्ञान उसे दे जाता है और जो उसकी अनुभूति को सुधार जाती है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में व्यक्ति स्वातंत्र की नई व्याख्या करते हुए उसका संबंध पूंजीवाद से जोड़ती है। वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को। मुक्तिबोध अपनी कविता में चाहते हैं कि मध्यवर्गी कविता अपने व्यक्तित्व को पिघलाकर जनता के साचे में ढाल ले दे, ताकि जनता की सच्ची मुक्ति का अभियान आगे बढ़ सके। इसलिए मुक्तिबोध को अस्मिता की खोज के कवि से ज्यादा अस्मिता के विलोप का कवि कहना चाहिए। आगे की कविता नदी के द्वीप में समाज निरपेक्ष व्यक्ति स्वतंत्र की खोज है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है, स्रोत श्विनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। आधुनिकता की एक विशेषता समाज के बीच व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश है। अज्ञेय के लिए आधुनिकता का अर्थ मध्ययुग के संस्कारों से मुक्ति तथा बौद्धिक चिंतन से लगाव है। वे नदी के द्वीप कविता में व्यक्ति को द्वीप और समाज को नदी मानते हैं। कविता का मानना है कि द्वीप का निर्माण नदी की रेत से ही होता है, लेकिन नदी के प्रवाह के विरुद्ध द्वीप अपने आकार और अस्तित्व के साथ खड़ा रहता है, यही उसकी स्वतंत्र पहचान है। कवि के लिए समाज के पुराने मूल्यों के साथ होना रेत बनकर नदी को गंदला करने के समान है। कवि की चाहत है कि पहले व्यक्ति नए व्यक्तित्व का आकार ले ले, फिर व्यक्तिवादियों निर्मित समाज का नया संस्कार एक नई दुनिया बनाएगा। आधुनिकतावादी कविता की प्रकृति छायावाद प्रकृति से भिन्न है। छायावादी प्रकृति में जहाँ हृदय और स्वच्छंदता के तत्व ज्यादा हैं, वहीं आधुनिकतावादी प्रकृति में बौद्धिकता का कठोरपन। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता है दुर्वाचल। इस छोटी सी कविता में हृदय और मस्तिष्क के तनाव का दिलचस्प चित्रण है। पाशवगिरी का नर्म चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहक शिशु मौन नीड़ों में, यह एक पर्यटन की आंखों से देखी गई प्रकृति है। यायावर कवि के लिए चीड़ों के जंगल में भरे पहाड़ पर जाती हुई पतली पगडंडी उमंग जैसी लगती है, जबकि उसके पैरों में बिछी ढलान से गिरती हुई नदी दर्द की रेखा जैसी दिखलाई पड़ती है। यहाँ उठान और ढलान का गहरा तनाव है। वस्तुतः प्रकृति से आधुनिक मनुष्य का रिश्ता केवल पर्यटक और मनोरंजन का रिश्ता है। प्रकृति को पता है कि आधुनिक मनुष्य फिर लौटकर उसकी गोद में बसने के लिए नहीं आने वाला है, इसलिए जब यायावर मन को पहाड़ पर लौटने का दिलासा देता है, तब बिजली उस छद्म को खोलते हुए प्रश्न करती है, अरे यायावर रहेगा याद। व्यक्तिवादी कविता जहाँ दोहे, गीत, मुक्तक और विभिन्न लोक धुनों पर रचे गए छंदों, लोक मुहावरों, लोक लय, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करती है, वहीं प्रयोगवादी कविता एवं नई कविता लोक छंदों की जगह अर्थ लय, नाद लय, गद्य लय, भाव की आंतरिक लय का प्रयोग करती है। यहाँ विराम संकेतों, मौन लकीरों एवं चिन्हों का प्रयोग ज्यादा दिखाई देता है। प्रयोगवादी और नई कविता में प्रयोग एक नया शब्द संवेदना के साथ व्यंजना पक्ष की नवीनता को भी दर्शाते हैं। बिंब विधान, प्रतीक विधान एवं उपमान योजना में नई कविता ज्यादा बौद्धिक एवं अभिजात दिखाई पड़ती है। अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की नई अनुभूति और नई अभिव्यक्ति का घोषणा पत्र है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वाशन अधिक खिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यह मूलतः प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति की कविता है। कवि के लिए प्रेम और सौंदर्य ज्यादा ठोस यथार्थपरक व्यक्तिक और बौद्धिक हो गया है। पुरातन सामाजिक जीवन के प्रेम के उपमान और प्रतीक पुराने पड़ गए हैं, इसलिए अब प्रेम में टकली कली, चंपे की नभ की कली, तारिका या जूही के फूल जैसे मुहावरे नहीं चल सकते। कवि के लिए सहराती जिंदगी में हरी बिछले घास और बाजरे की कलगी जैसे उपमान ज्यादा सहज, आत्मीय और जीवन के करीब लगते हैं। बदलती हुई चेतना का अगला रूप यहाँ दिखाई पड़ता है। नई संवेदना के साथ नए शिल्प और नई अभिव्यक्ति की घोषणा का प्रमाण भी इस कविता के भाषिक संरचना में मौजूद है। आधुनिक कविता के 5 महत्वपूर्ण कवियों माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और अज्ञेय में अंतिम जिन तीन कवियों का यह जन्म शताब्दी वर्ष है उन्हें श्रद्धांजलि। रामाज्ञा शशिधर सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी।